नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहनिर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और प्लेनेट ऑफ मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तथा मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा।
वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज।
भारत और मलेशिया ने संयुक्त बयान में वर्ष 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की दो दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में विचारधारा आधारित शासन ने छत्तीसगढ़ सहित उन राज्यों का कायापलट कर दिया है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ एक्ट 25, नजरिया बदलना, सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 7.5% की विकास दर हासिल की है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में उल्लेखनीय विकास हुए। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी ने जापान के संसदीय चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया है। एक टेलीविजन साक्षात्कार में ताकाइची ने कहा कि इस शानदार जीत के बाद वह विपक्ष का समर्थन प्राप्त करते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रारंभिक नतीजों में ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने अकेले 316 सीटें जीत ली हैं, जो 465 सदस्यों वाले निचले सदन में पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 261 सीटों से कहीं ज्यादा हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पश्चिम बंगाल में सिवरी रोड ओवरब्रिज और कुमारपुर रोड ओवरब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने आसनसोल बोकारो रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने घोषणा की है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हथकरघा बुनकर सालाना 10 लाख रूपये तक कमा सके। कल शांतिपुर में बुनकरों के एक सम्मेलन में श्री सिंह ने शांतिपुर की मशहूर साड़ियों को अमरीका और यूरोप के बाजारों में निर्यात करने का वादा किया। श्री सिंह ने राज्य सरकार की कथित तौर पर केंद्रित योजनाओं को रोकने के लिए आलोचना की, जिससे बुनकरों को धागा खरीदने के लिए गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ताकाइची के सक्षम नेतृत्व में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। भारतीय दूतावास ने काठमांडू में 61वां भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया। इसमें ITEC के पूर्व छात्र और अन्य मेहमान शामिल हुए। नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी दिनभर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार, असम और मेघालय में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।